ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم آٹھویں پارے کا دوسرا رخ دیکھیں گے, سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات, اور وہی ذات ہے جس نے باغات بنائے چھتوں پر چڑھے ہوئی اور غیر چھتوں پر چڑھے ہوئے, یعنی مراد ہے کہ کچھ باغات میں بیلیں اگائیں اور کچھ کے اندر درخت اگائے. والنخل والزرع مختلفا اکلہ, اور کھجور اور کھیتیاں مختلف ہیں ان کے میوے, اور زیتون اور انار ملتے جلتے ہیں اور غیر ملتے جلتے. کائنات میں اتنی اچھی چیزیں بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس دنیا کو سجایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کہا کلو من ثمری ہی اذا اثمرا, کھاؤ پھلوں میں سے جب کے پھل آ جائے, اور دو حق والے کو اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن, اور دیکھو زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت سا دسترخوان بنایا ہوا ہے, جیسے ہم ٹیبل کلاتھ رکھتے ہیں پھر اس پہ مختلف قسم کے کھانے چنتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کائنات میں یہی کچھ کیا ہوا. ہر قسم کی چیزیں, کہیں کھٹی کہیں میٹھی کہیں سرخ کہیں پیلی نیلی, اور سب کچھ بنا کے کہا کھاؤ. لیکن ادب کیا سکھایا کہ اسراف نہ کرنا. اسراف کیا ہے؟ کہ حد سے زیادہ نہ کھاؤ, اور دوسرا ہے کہ دوسروں کا نہ کھاؤ, اور تیسری اسراف میں بات کیا آتی ہے کہ کھانے کے بعد پھر اللہ کا حکم بھی مانو. خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں ہم کھاتے اللہ کا ہیں لیکن اسی کے خلاف حکموں کے جیتے ہیں. ہماری زندگی ایسی چیزوں میں گزر جاتی ہے کہ ہم اپنے مال کو صرف اپنا سمجھتے ہیں, دوسروں کا حق نہیں دیتے. تو انسان کو کھانا پینا مال دولت کبھی بھی نقصان نہیں دیتا اگر انسان زیادتی سے بچے اور حق والوں کے حق ان کو ساتھ ساتھ دیتا رہے. اس کے بعد جانوروں کی کچھ قسمیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, اور کچھ جانور ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی لمبے قد والے, مثلا اونٹ اور گدا گھوڑا, اور کچھ ہیں فرشا, کچھ چھوٹے قد والے یعنی فرش سے لگے ہوئے جیسے بکریاں بھیڑے. یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں. کرو کہ کلو مما رزقکم اللہ, کھاؤ اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا. لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں شیطان کے قدموں کے پیچھے لگنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے جانور جن کو اللہ نے تمہارے کھانے پینے کے لیے بنایا, اب تم ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے کسی کو اس لیے نہ کھاؤ کہ مجھے اس پہ رحم آتا ہے, کسی کے اوپر تمہیں ترس آنے لگے, کہیں اینیمل رائٹس کے نام پہ کچھ نہ کرو. یہ درست نہیں ہے. کھاؤ پیو, اگر جانوروں کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. ایک ایک وقت میں کئی کئی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے باقی جانوروں کی نسبت. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو کھانے کے لیے پیدا کیا ان کو کھاؤ, جن کو سوار ہونا ہے ان کے اوپر سوار رہو. یہی حق ہے. چیزوں کو استعمال کرنا جس مقصد کے لیے وہ دی جاتی ہیں, وہ مقصد پورا کر لیا جائے تو اس کے اندر پھر کوئی قباحت نہیں. سمانیت ازواج, آٹھ قسمیں ہیں یعنی مختلف قسم کے جو کیٹلز ہیں ان کی ٹوٹل آٹھ قسمیں ہیں. کون سی؟ من الزان اثنین و من الماز اثنین, دو جو ہیں وہ بھیڑوں میں سے ہیں اور دو بکریوں میں سے. اب یہ فرشا یعنی چھوٹے قد کے جو جانور ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. کہہ دیجئے کیا کہ مردوں کے لیے آز ذکرین حرم مل انثیین, یعنی یہاں اصل میں اگر آپ دیکھیں تو مشرکین مکہ کی ان بدعات کا تذکرہ ہے جو کھانے پینے کے معاملے میں تھی. حلال اور حرام کا کچھ اس طرح کا انہوں نے خود ساختہ نصاب بنایا ہوا تھا. کسی چیز کو مردوں کے لیے حلال کر دیتے تھے, کسی چیز کو عورتوں کے لیے حلال کر دیتے تھے, یعنی جو جہاں دل جاتا تھا دین کے نام پہ پیش کرتے تھے. اور سیدھے سادھے کم پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ ان کی باتوں کو سن کے واہ واہ کرتے, جھومتے کہ واہ کیسی اچھی باتیں انہوں نے کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ درست باتیں نہیں ہیں, تم نے اپنی مرضی سے اللہ کے جانوروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس سے وہی حق حاصل کرو. اور آٹھ نر مادہ ہیں, دو بھیڑ کی قسم کے دو بکری کی قسم کے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ, یعنی نہ تو نر حرام کیے نہ مادہ, یا وہ بچے جو بھیڑوں کے پیٹ میں ہیں. ये असल में अब हम इस वक्त नहीं समझ सकते, लेकिन उनकी बिदात थी। किसी के पेट का बच्चा अगर जिंदा है तो उसको मर्द खाएंगे, मुर्दा है तो औरत भी खा सकती है। अल्लाह ताला कहते हैं, जो बकरियों के पेटों में हो, ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। यानी अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं किया। वमिनल इबिलिस नईन, और इसी तरह दो ऊँट की किस्म से हैं और दो गाय की किस्म से। पूछो, इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊँटनी या गाय के पेट में हो। और अगर ये खुद साख्ता बातें करते हो तो ज़रा एक बात तो बताओ, अम कुंतुम शुहदा इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा, क्या तुम उस वक़्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का हुक्म तुमको दिया था। यानी नहीं था, जब हुक्म दिया ही कोई नहीं तो तुम वहां मौजूद कैसे हो सकते थे। तो फिर याद रखो कि ऐसी बातें कहने करने वाले कौन हैं, जालिम हैं। ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से इस तरह की बातें कर देते हैं, ये बहुत जालिम लोग हैं। फमन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कज़िबा, फिर इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मनसूब करके झूठी बातें कहे, ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह नहीं दिखाता। आज हमारे माशरे में भी इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि लोग ये खा सकते हैं, कोई कुंडों की बात करते हैं, कोई औरतें नहीं खा सकती, कोई प्रेग्नेंट नहीं खा सकती। इसी तरह कुछ ऐसी रसूमात है, बेवा औरत वहाँ शामिल ना हो। तो ये वक्त के रिवाज तो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का दीन ऐसा नहीं है। अब बताया जा रहा कि क्या हलाल है। जब इतनी हराम हलाल की चीज़ें बाती आएँ तो बड़ी खूबसूरत आयत है, कुल ला अजीदु फी मा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहू। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए जो वही मेरे पास आई है, इसमें तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जो तुमने खुद ब खुद घड़ के रखी हुई है, जो किसी खाने वाले पर हराम हो। इल्ला ये चीज़ें हराम है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। फिर रिपीटिशन है वही बात जो सूरह मायदा में हुई, सूरह बकरा में हुई। यहाँ दोबारा अल्लाह के नबी के ज़रिए से कहलाया जा रहा है कि मेरी शरीयत में तो बस ये चार ही चीज़ें हराम है। क्या? नंबर एक मुर्दार, फिर बहाया व खून हो, या सूअर का गोश्त जो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो। इसके अलावा और कुछ हराम नहीं। इसमें भी कुछ रुख्सत है, और वो क्या? फमन इस्तुर्रा गैर बाग़िम वला आद। इसके बावजूद जो शख्स मजबूरी की हालत में इनमें से कोई चीज़ खा ले, बग़ैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बग़ैर इसके कि वो ज़रूरत की हद से तजावुज़ कर ले, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब यहाँ मजबूरी से मुराद टेस्ट की मजबूरी नहीं है, बल्कि जान बचाने की मजबूरी है। ये नहीं कि आपको जी मैकडोनल्ड का चिकन बड़ा पसंद है तो अब आप मजबूर हो गए। मुराद ये है कि कुछ और खाने को ना मिले तो शौक से नहीं, अल्लाह का हुक्म तोड़ने का इरादा ना हो। अगर फिर भी डरते डराते कोई दो चार लुक में तोड़ ले ताकि हलाल चीज़ तक पहुँच जाए, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके बाद उनको माफ़ कर देंगे। देखिए, जिस कौम में इस तरह हलाल और हराम में चेंजेस आती हैं ना, तो उस कौम का जवाल शुरू होता है। इसीलिए अब आगे अल्लाह ताला यहूद के जवाल की वजह बताएंगे। लिख लीजिए कि यहूद को अल्लाह ने हुक्म क्या दिए थे और उन्होंने क्या किया। वह अल्लज़ीन हादू हर्रम ना कुल्लज़ी ज़ुफ़र, और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार कर ली, यानी अल्लाह ने नहीं उनको यहूदी बनाया था, वो खुद ही खुद को कहने लग गए फ़िरकावारियत के नाम पर, इन पर हमने सब नाखून वाले जानवरों को हराम कर दिया था, और गाय और बकरी की चर्बी भी, सिवाय इसके जो उसकी पीठ और उनकी आंतों से लगी हो या हड्डी से लगी रह जाए। कच्चे गोश्त में से इनको चर्बी निकाल के खानी पड़ती थी। ये हमने इनकी सरकशी की सज़ा इनको दी थी। यहाँ पता चलता है कि जब कौमें सरकश हो जाती हैं तो नेमतों से महरूम हो जाती हैं, और जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब देखिए, अल्लाह ताला अपनी तरफ ला के कह रहे हैं, वइन्नल्लाह सादिकून। तो क्या पता चला कि आज ये लोग अपने दीन के बारे में जो मर्जी कहें, लेकिन असल हकीकत क्या है जो अल्लाह ताला ने बयान कर दी। फ़ैन कज़्ज़बू का, अब यहाँ अल्लाह के नबी को कहा जा रहा, ए नबी, अगर ये आपको झुठलाते हैं, और बहुत झुठलाते थे, तो क्या करो? फ़क़ुर रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया, तो कह दो कि मेरा रब तो रहमत वाला है, बहुत वसत वाली रहमत है, और नहीं उसका अज़ाब फेरा जाता मुजरिम कौम से। यानी जो भी गलत काम करेगा फिर वो पकड़ा जाएगा। और जब भी सच्ची बातें आती हैं तो कुछ लोग आगे से हेर फेर बहुत ज़रूर करते हैं। इसका अल्लाह ताला ने पहले से अपने नबी को बता दिया, सयकूलुल्लज़ीन अशरकू, ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता, यानी अगर अल्लाह ताला की ख्वाहिश होती, माँ शरक ना, हम कभी भी शिरक ना करते और ना हमारे बाप करते। आज भी लोग यही बात कहते हैं ना, जी अल्लाह रोक ले, अल्लाह हमें क्यों नहीं रोकता। तो हर तौर के लोगों ने गुनाह या शिर्क या नाफरमानी की और अल्लाह का नाम लिया कि जी अल्लाह ने कहा है, अल्लाह का अगर इतना हमारे ऊपर काबू है, इतना कंट्रोल है, तो वो हमें रोक लेता। वला हर्रम ना मिन शय्यिन, और हम कोई चीज़ भी ना हराम करते। वही बात है कि अपना मुर्दा किसी दूसरे के सर पे डालना, ये जुर्रत है। इसको कहते हैं कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि इंसान आंखें भी दिखाए और काम भी गलत करे, तो ऐसी बातों को कहते हैं ये सब जी अल्लाह के हुक्म से करते थे, अल्लाह हमें रोक लेता। अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोग कौन है, इसी तरह झुटलाया था उन लोगों ने जो आपसे पहले थे हक को, यहाँ तक कि आखिर हमारे अजाब का मज़ा उन्होंने चख लिया। ऐसे लोग जो हैं ऐसी बातें करके अल्लाह के अजाबों को दावत देते हैं, इसलिए आप इनको खूब बताइए कि इनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको, कोई दलील, कोई रेफरेंस, कोई किसी किस्म की बुनियाद नहीं। तो असल बात क्या है कि तुम तो सिर्फ महज गुमान पर चल रहे हो और क्यास सराइयां करते हो, तुम्हारी बातें सिर्फ जो हैं वो क्यास की हैं। फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत तो फिर अल्लाह के पास है, तुम जो बातें करते हो जिस किस्म की करते हो ये तुम्हारी मर्जी है, बेशक अल्लाह ताला चाहता तो तुम सबको हिदायत देता, यानी वो दे सकता था, फिर दी क्यों नहीं, तुमने मांगी नहीं। या इसे ये ना समझिए कि इनके बेहिदायतें होने का इल्ज़ाम अल्लाह पर आ रहा है, बल्कि ये कि अल्लाह की कुदरत बताई जा रही है कि अल्लाह चाहता तो ज़बरदस्ती नाक के रुख तुम्हें पकड़ कर हिदायत की तरफ ले आता, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं थे, उसने नहीं दी। इनसे कहो कि लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ही ने इन चीज़ों को हराम किया, फिर अगर वो गवाही दे भी दें तो तुम उनके साथ कभी गवाही ना देना, यानी इनकी हाँ में हाँ ना मिलाना। और ऐसे लोग जो ऐसी गवाहियाँ दे देते हैं, अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि इनकी गवाहियों के जवाब में तुम ना इनकी ख्वाहिशों पर चलना, वला तत्तबि अख्वाल लजीना कज़्ज़बू भी आयातीना, और ना पैरवी कीजिए उन लोगों की ख्वाहिशों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया। देखिए लोग अपने शौक़ और अपने टेस्ट के लिए बहुत सारी बातों को झुटलाते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं सरेआम ये दीदा दलेरी के साथ मेरी आयतों को झुटलाते हैं, इनकी ख्वाहिशों के पीछे आप ना चलिएगा, और ये लोग तो वैसे ही आखरत के मुनकर हैं और जो दूसरों को अल्लाह ताला का हमसर बनाते हैं। इसके बाद जो आयत है ना कुल तआलु अत्लु मा हर्रमा, ये आयत जो है ये बहुत अहम आयत है, और इस एक आयत में पूरे दीन की खुलासा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल तआलु अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैया, ए मोहम्मद इनसे कहो कि आओ मैं तुमको सुनाऊँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियाँ आयद की हैं। किसी को अगर आपने दीन इस्लाम का खुलासा देना हो ना तो बस ये एक आयत दे दीजिए। नंबर एक क्या कि तुम उसके साथ किसी दूसरे को शरीक न ठहराओ, ये है पहली पाबंदी जो इस्लाम में भी लगाई, हर दीन में लगी थी। और किसी को भी दीन सिखाएंगे, किसी को इस्लाम की दावा देंगे, तो सबसे पहली चीज़ है, इनको उम्महातुल शरिया भी कहते हैं, यानी हर शरीयत की जड़। अल्लाह ताला की ये भेजी हुई हर शरीयत में ये चीज़ मौजूद रही कि शिर्क नहीं। दूसरी चीज़ वालदैन के साथ नेक सलूक करो। कल एक हमारी क्लास थी बच्चियों के साथ, तो उसमें हमने वालदैन के ऊपर थोड़ी बात की। यकीन करें बच्चियाँ भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। इनको एक स्टोरी सुनाई कि किस तरह बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को लोग इग्नोर करके बीवी बच्चों के चौंचलों में रहते हैं, लेकिन ज़रा सी तवज्जो दे दी जाए तो कितनी मोहब्बत होती है। तो उसी बात में ऐसा हुआ कि हमने यहाँ बैठे हुए बात की, ऐसे अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि देखी हूँ भला क्लास में कौन माँ बेटियाँ बैठी हैं। तो एक बच्ची बैठी थी, उसकी अम्मी भी थी, तो मैंने उसका नाम लेके ऐसी माइक में कह दिया, उठो बेटा जाओ अपनी अम्मी को मिलो और सबके सामने को आई लव यू। बच्ची हिले ही ना अपनी जगह से। फिर मैंने उसको कहा, खैर फिर ढीली ढाली उठी, तो मैंने कहा कि आप कैसे, एक मौका है आपकी माँ इधर मौजूद हैं, जो कुछ सुना है आप अभी कर लें, बाकी तो घर जाके करेंगे। फिर उठी तो उठते हुए कहती, आज ही अम्मी से लड़के आई हूँ। वो झगड़ के आई हुई थी, माँ से लड़के आई हुई थी, माँ भी पीछे बैठी हुई थी। खैर वो उठी तो बड़ी अकड़ी हुई, माँ को गले मिल रही, बाजू हाथ पीछे, तो मैंने कहा सही तरीके से मिलो। माँ ने झट से उसको गले लगा लिया। मैंने कहा इतनी अकड़, आज इस माँ को कुछ हो जाएगा तो तुमने सबसे पहले रोना है, 4 दिन इस माँ से दूर बैठ रहोगी, खुद ही रोना पड़ेगा। लेकिन मैं हैरान थी कि अल्लाह का दीन कितना प्यारा है कि अपने साथ साथ माँ बाप का भी कुर्ब दे देता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कितना प्यारा दीन है जो वालदैन के एहसान बताता है, और सिर्फ वालदैन के नहीं बल्कि औलाद के भी। वला तक्तुलू औलादकुम मिन अमलाक, और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और इनको भी देंगे। यानी अब इसलिए बच्चे ना मारते जो अपने के खाएंगे कहाँ से। और जूं ही कत्ल औलाद की बात हुई तो साथ ही बात आ गई कि वला तक्रबुल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन, और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो खुली हों या छुपी। क्योंकि जब से इस तरह की दवाइयाँ और ऐसे इलाज निकल आए जिससे लोग अपने पेट के बच्चों को मार सके या प्रिकॉशंस ले लें, तब से जिना भी आम हो गया। डर जो कोई नहीं रहा तो उसके बाद इंसान कुछ भी करे, तो अल्लाह ताला ने मना किया। और जो ही बात इसकी हुई तो साथ ही कत्ल की बात है, क्योंकि अक्सर बच्चों को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है, या ऐसे काम करने वालों को उनके भाई गैरत के नाम पे मारते हैं। तो कहा वला तक्तुलु नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मुहतरम ठहराया हो हलाक ना करो, हाँ मगर हक के साथ, किसी को मारो नहीं। ये है वो बातें जिनकी हिदायत इसने तुमको की है, क्यों? लअल्लकुम तअक्लून, फरमाया कि अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लम का वसीयत नामा सुनना चाहे, वसाकुम की बात आ गई ना, तो वो ये आयतें पढ़ ले। ये आपकी वसीयत है कि क्या काम किया जाए। कुछ इसमें मजीद चीज़ें भी हैं, वला तकरबु माल यतीमी, और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो सने रुश्त को, जवानी को पहुँच जाए, यानी यतीमों का माल ना खाओ इस तरह से कि उन गरीबों ने क्या कहना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप तो मर गए। नहीं, तरीके से करो, अच्छे तरीके से, मारूफ तरीके से उनके इस्तेमाल करो। और वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और अदल और इंसाफ के साथ तोला करो, चीज़ों में डंडी ना मारा करो, हक ना मारो, किसी की अच्छी चीज़ लेकर अपनी बुरी उसको ना दे दो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ रखते हैं जितना कि उसके बस में है, अल्लाह किसी को उसके बोझ से ज़्यादा नहीं आजमाता। और वाइज कुल तुम फादिलो, और जब बात कहो तो इंसाफ की बात कहो, ख्वाह मामला रिश्तेदारी ही का क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये हैं 9 बातें, इन 9 बातों के बाद कह दिया वन्नहाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये है मेरा सीधा रास्ता, ये है इस्लाम। सिराती मुस्तकीमा, यहाँ क्या इस्लाम, दीन इस्लाम है, कोई मुश्किल दीन नहीं है, इधर की उधर नहीं है, सीधा सीधा बात है। अल्लाह का भी हक दो, उसके बंदों का भी दे दो, बस जाओ अमल करो। पढ़ लिया तुमने, सीख लिया, पता लग गया। हाँ देखो, बोला तत्तबिउस सुबल, और देखो इधर उधर के रास्तों में ना जाना, क्योंकि ये तुम्हें सीधे रास्ते से भटका देंगे। और ये है वो हिदायत नामा जो तुम्हारे रब ने तुमको दिया, शायद कि तुम बच जाओ, जहन्नुम का ईंधन बनने से बच जाओ। देखिए कितना आसान है ये दीन। आज भी अगर नॉन मुस्लिम्स को ये आयतें ही सिर्फ आप पढ़ाएं, इसमें देखिए 90% तो वो चीज़ें जो हर दीन वाले मानते हैं। कौन कहेगा झूठ बोलो, कौन कहेगा डंडी मारो। अगर आप इस आयत को पढ़ते हुए कमल के लिए अपने लिए नुक्ता नोट कीजिए कि किसी एक नॉन मुस्लिम तक ये आयतें ज़रूर आपने पहुँचानी है, शेयर करें। और मैं तुम्हें बताऊँ हमारे पूरे दीन का खुलासा क्या है, तो आप देखेंगे वो कहेगा यस राइट, इट्स राइट, ये तो बड़ा लॉजिकल दीन है। अब इस दीन में ना तो 4 शादियों की बात है, ना औरत और मर्द की बातें हैं, ना कोई और रिश्तों की बातें हैं। हमने खामखा लोगों को ऐसे इश्यूज में डाल दिया जो हमारे अपने कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसकी बुनियाद पे वो असल खूबसूरत दीन से भी हटने लगते हैं। फिर इसके बाद फरमाया सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामा, फिर हमने मूसा को किताब अता की जो भलाई की रविश अख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर ज़रूरी चीज़ की तफसील और सरासर हिदायत और रहमत थी, और इसीलिए बनी इसराइल को दी गई थी। यानी कुरान आज है लेकिन कल तौरात इसी शान की थी, अल्लाह ने उसको मुकम्मल दिया था, ज़रूरी ज़रूरी बातें उसमें भी थी, और ये सब करने को अल्लाह ने क्यों कहा, क्यों किताबें दी, लअल्लहुम बिलिक़ाए रब्बिहिम युमिनून, शायद कि अल्लाह से मुलाकात पर यकीन ले आए, ईमान ले आए। क्या पता चला, किताबें अल्लाह से मुलाकात पर यकीन दिलाती हैं। वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन, अब तौरात का वक्त गया, और इसी तरह तो अब हमने किताब बरकत वाली नाजिल की तुम पर ताकि तुम इसकी पैरवी करो और तकवा की रविश अख्तियार करो, दूर नहीं कि तुम पर रहम किया जाए। आज ये किताब क्यों आई, चूमो चाटो तावीज़ बनाओ जिन भूत भगाओ, नहीं फत्तबेउ, इस किताब पे अमल करेंगे तो तुरहमून, रहम किए जाओगे। और इस किताब के भेजे जाने की एक और भी वजह है, और वो क्या, अंतकुलु इन्नमा उन्जिलल किताबु अला ताइफतैनि मिन क़बलिना, अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के 2 गिरोहों को दी गई और हमको कुछ खबर ना थी कि वो क्या पढ़ते पढ़ाते थे, और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर ये किताब नाजिल की गई होती तो हम तो दूसरों से ज़्यादा हिदायत वाले होते। मक्का वालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नबी तुम्हारे पास इसलिए आया और किताब इसलिए दी गई कि तुम कहो कि हाँ जी वो तो यहूद और नसारा के पास एक किताब थी, हमारे पास तो आई नहीं, और आती तो हम बहुत हिदायत वाले होते। लेकिन जब किताब आती है, जब बात बताने वाला आता है, तो लोगों का हाल क्या हो जाता है, जो मक्का वालों का हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील और हिदायत और रहमत आ गई, अब इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह की आयतों को छुटलाए और उनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयात से मुंह मोड़ते हैं, इनको इस मुंह फेरने के जुर्म में हम बदतरीन सजा देंगे। क्या आप ये लोग इस बात के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आ खड़े हों यानी मौत के, या फिर तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की बाज़ खुली निशानियाँ आ जाएं? जिस रोज़ तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ आ जाएंगी, फिर किसी शख्स को इसका ईमान लाना फ़ायदा ना देगा जो अब तक ईमान ना लाया होगा और जिसने अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई होगी। इतनी बातें करने के बाद कहा है मोहम्मद, इनसे कह दो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। इतना क्लियर कट हक आ जाए फिर लोग ना माने, बदकिस्मती की बात है। जब लोग एक हक से कटते हैं तो उसका नतीजा इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, फिर दीन फ़िरक़ों में बट जाता है। जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, यकीनन इनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं। इनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, वही इनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। हाँ, जो कि अल्लाह के पास नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो बदी लेकर आएगा उसके लिए बस उसी के बराबर है। ये है अल्लाह की रहमत। बदी एक के बदले में एक ही और नेकी एक के बदले में 10। इसके बावजूद भी फिर लोग जहन्नुम में जाएं तो वही जाएंगे कि जिन्होंने वाकई जहन्नुम में जाने का इरादा किया हुआ। अल्लाह का रहम, अल्लाह का एहसान तो इतना ज़्यादा है, लेकिन लोग उस पर गौर नहीं करते। तो फरमाया, जो बुराई करेगा उसको उतना ही बदला मिलेगा जितना उसने कसूर किया, और उस पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। ए मोहम्मद, कह दो कि मेरे रब ने यकीनन मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। आपको मुझे दिखाया कौन सा रास्ता? बिल्कुल ठीक दीन, जिसमें कोई टेढ़पन नहीं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है जिसे यकसू होकर उन्होंने इख्तियार किया था, और वो मुशरिकों में से न थे। कह दीजिए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस इनको कह दो मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसका कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया, और सबसे पहले मैं सरे ताज झुकाने वाला हूँ। मैं सबसे पहले खुद अमल करने की कोशिश करूँगा। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाऊँ? हालांकि वह हुआ रब्बु कुल्ली शयइन, वो तो हर एक चीज़ का रब है। वला तकसिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और हर नफ्स के ऊपर वही होगा जो उसने कमाया होगा। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया होगा उसी का बदला उसको मिलेगा। और हकीकत यह कि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। इस वक्त वो तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। वहुअ अल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ध, यहाँ से अब सूरत की बिल्कुल आखिरी आयात है, और अल्लाह ताला बिल्कुल एक हुज्जत का अंदाज करते हैं कि लोगों, हमने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बना दिया, फिर तुम में से बास को बास के मुकाबले में ज़्यादा दर्जे भी दे दिए। क्यों? ताकि लिया ब्लुआ कुम फी मा ताकुम, ताकि वह तुमको आजमाए जो उसने तुमको दिया। इसको हाईलाइट कर लें, हर नेमत इम्तहान का पर्चा। बच्चे इसलिए मिले लिया ब्लुआ कुम, घर क्यों मिला लिया ब्लुआ कुम, शौहर क्यों मिला लिया ब्लुआ कुम, एक एक नेमत, सेहत की, वक्त की, माल की, ताकि आजमाइश की जाए। इन्ना रब्बक सरीउल इक़ाब, बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत तेज़ है, और साथ साथ वइन्नहु लगफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शिश वाला और मेहरबान है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ सूरत अलनाम पूरी होती है। शुरू में बात हुई थी कि सूरत अलनाम और सूरत अलराफ जोड़ा है, लेकिन सूरत अलनाम में रहमत का टॉपिक है, और आगे हम पढ़ेंगे सूरत अलराफ में अल्लाह का कहर है। कौमों पे अजाब आए, उनको अल्लाह ने नीस्त तो नाबूद कर दिया, उनकी कहानी है। अल्लाह की ज़ात एक ही है, लोग अपने रवैयों के साथ ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ किस किस्म का मामला करे, और अगर लोग फिर भी इसके बावजूद अल्लाह की बात ना माने तो फिर अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस पूरी सूरत में हमने जो कुछ भी सीखा, पढ़ा और कहा, इस पे हमें सबसे ज़्यादा खुद अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, और कुरान पाक को इस तरह हमारे जिस्म के अंदर, हमारी ज़ात, हमारे रवैयों में डाल दे कि हमें इसको समझने के लिए किसी बाहर के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।